ओम शांति। बाबा हम सभी के पास आया और आते ही उसने, मैं ऐसा कहूं कि हम सब पर बहुत उपकार किया। हम में से अनेक आत्माएं जो दुखों के आंसू बहा रही थी, उनके आंसू पोंछकर उनके जीवन में सुख की सरिता बहाई। उन्हें ऐसा लगा बाबा की दृष्टि पाते ही कि जैसे बाबा ने उनके जन्म जन्म के दुख खींच कर बाहर निकाल दिए हों। हर एक पर उपकार किया है बाबा ने, बहुत सुख दिया है आकर। सबसे बड़ा सुख तो हम सभी को जो भक्ति में, सन्यास में, शांति की तलाश के लिए, भगवान से मिलने के लिए जहां तहां भटक रहे थे, तड़फ रहे थे, उन्हें सत्य ज्ञान देकर ठिकाना दे दिया, बोध करा दिया, आभास करा दिया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है। तो बाबा ने आकर हम सबको ऐसा धीरज दिया, ऐसी शांति दी, सांत्वना दी कि हम संसार की भटकनों से मुक्त होकर स्थिर चित्त हो गए। अगर हम बाबा के उपकारों को याद करें तो उसके उपकारों के बदले गुणगान करते हुए ही हम योगयुक्त हो जाएं, न केवल इस समय लेकिन द्वापर युग से भक्ति में भी वो हमारी मदद करता आया है, हमारे बिगड़े काम संवारता आया है, हम पर उपकार करता आया है। और इस समय का उसका उपकार तो हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल है। तो भक्ति का फल देकर उसने हम पर इतना उपकार किया कि दो युग तक हम उसकी महिमा के गीत गा गा कर भी खुश रहेंगे, अपने को भाग्यशाली महसूस करते रहेंगे जब हम उसके उपकारों को याद किया करेंगे। तो कितना सुंदर हमारा भाग्य है कि इन आंखों से भगवान को बार बार देखने का चांस मिला, उसकी मधुर वाणी बार बार रोज रोज सुनकर आत्मा तृप्त हो गई, उसके द्वारा जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो अब उसकी आज्ञा है कि बच्चे अब मेरे साथ रहो, इस संसार में न रहो, ये संसार जैसे कि तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए संसार उस दिन नष्ट हो गया जिस दिन तुम बाबा के बने, जिस दिन तुमने बाबा की गोद ली, उस दिन से ऐसा विश्वास कर लें कि यह संसार अब हमारे लिए नहीं है। हमें इस संसार में सुख नहीं मिल सकता, हमें इस संसार में संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आओ, आकर मेरे पास रहो, आनंद लो इस मिलन का। बाबा ने अनेक बार हम सबको मुरलियों में कहा कि कम से कम 8 घंटे मुझे याद करो। और हम में से अनेक आत्माएं जब ये बात सुनती हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अनेक भाई बहने इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। साइकोलॉजिकली उन्होंने पहले ही मान लिया है कि ये काम अपना नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, हम गृहस्थ में रहते हैं, हम धंधों में रहते हैं, ये तो वो कर सकते हैं जो समर्पित हैं, जिन्हें कोई चिंता नहीं, जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं। परंतु बाबा को इस बात का पता है कि मेरे बच्चे कलियुगी संसार में, गंदे माहौल में, अनेक जिम्मेदारियों में, चिंताओं में और अनेक परिस्थितियों में रह रहे हैं, फिर भी उसने कहा, बच्चे मुझे कम से कम 8 घंटे याद करो। जानते हुए कहा, इसका अर्थ है कि इन सब समस्याओं का समाधान ये योग ही है। उसे पता है ये कठिन काम है, फिर भी उसने बार बार हम सबको प्रेरित किया है। तो वो ये जानता है कि इनमें से ही अनेक आत्माएं ऐसा अच्छा योग कर सकती हैं। बाबा के इसके लिए बहुत अच्छे महावाक्य हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि वो अपने योग के द्वारा इस संसार में पवित्रता, सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि ये योग ही सबसे बड़ी सेवा है, संसार को बदलने का साधन है, भविष्य सत्ययोगी राज तिलक प्राप्त करने का आधार है। बाबा ने यह भी कहा है, जो सहज योगी हैं वही विश्व राज अधिकारी होंगे, जो सहज योगी हैं वो यहां स्वराज अधिकारी बन जाते हैं और परिणाम में उनको विश्व का राज प्राप्त हो जाता है। तो हम इस योग के महत्व को समझते हुए इसके प्रति अपने अंदर विशेष रुचि पैदा करें और अपने को मानसिक रूप से तैयार करें कि हम अवश्य बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। बाबा ने अगर कहा है कि मुझे 8 घंटा याद करो, तो हम अपने को इस तरह बात करें कि हम अगर 8 घंटा याद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम बाबा को ऐसा योग अभ्यास करके दिखाएंगे, हम अपने योग अभ्यास के द्वारा अनेक ब्राह्मणों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमें देखकर अनेकों को ये आभास हो जाए कि संसार में रहते हुए कार्य व्यवहार करते हुए भी 8 घंटे योग करना सहज है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इन सब के लिए हमारे पास योग का बहुत स्पष्ट ज्ञान, योग को भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करने की विधियां, योग के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनका ज्ञान, उनको कैसे हटाया जाए उसकी विधि, और अपने अंदर निरंतर उमंग उत्साह का होना आवश्यक है। तो पहले हम थोड़े में योग की विधि की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सभी ये बात जानते हैं, बाबा ने अनेक बार कहा, योग अर्थात अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये भी बाबा ने कहा, योग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। तीसरी डेफिनेशन ये भी बाबा ने दी, अभी अभी हमने सुनी मुरली में, राजयोग अर्थात डेड साइलेंस, जिसमें चारों ओर सन्नाटा छा जाए, राजयोग अर्थात ईश्वरीय मिलन, राजयोग अर्थात सब संबंध एक बाबा से, एक परमपिता से। ये सब हम अनेक बार सुन चुके हैं। हम इसको और सरल भाषा में डिफाइन करें, इसकी व्याख्या करें, तो सबसे पहले हमें योग अभ्यास में स्वयं को आत्मा समझना होता है। इस लैंग्वेज को मैं जरा करेक्ट कर दूं, आत्मा तो हम समझते ही हैं, लेकिन हमें आत्मा होना पड़ेगा। हम आत्मा हो जाएं, जैसे यहां पुरुषों को ये स्पष्ट महसूसता है कि वो पुरुष है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। नारियों को ये स्पष्ट महसूसता है कि वो नारी हैं, उन्हें भी कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। ऐसे ही इन दोनों से परे हम एक नेचुरल महसूसता रहे कि हम आत्माएं हैं, इस शरीर में विराजमान हैं। हमें इस स्थिति तक पहुंचना है। बाबा ब्रह्मा अपने लास्ट के अनुभव में इस तरह कहते थे कि बाबा तो इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इसमें हो ही नहीं। ये अंतिम स्थिति थी बाबा की, इसको निराकारी स्थिति कहते हैं। बाबा ने अपनी मूल्यों में इन स्थितियों के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया है, निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, विदेही स्थिति। इन सब को सुनकर कई लोग जरा कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये अलग अलग हैं। बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, निर्संकल्प स्थिति, शक्तिशाली स्थिति या ज्वाला स्वरूप स्थिति, इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ तो हैं, पर इनके मीनिंग्स कितने समान हैं इसकी भी थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेंगे। तो जब आत्मा देह में रहते हुए स्वयं को इससे अलग महसूस करती है और कर्म करती रहती है, इसको विदेही स्थिति कहते हैं। आत्मा शरीर में है परंतु कर्म भी कर रही है और न्यारेपन की फीलिंग में है, इस अनुभव के लिए शब्द प्रयोग कर दिया, विदेही स्थिति। जब हम योग में बैठे हैं और देह से बिल्कुल न्यारे हो गए, जब हमारी कर्म इंद्रियां पूर्ण तरह पूर्णतया शीतल हो गई, एक तरह से शिथिल पड़ने लगी। बिल्कुल ऐसे लगे हमें कि हाथ भी उठाएं तो धीरे उठता है, बोले भी तो तेज नहीं बोला जाता है, देखें भी तो कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। जब इस तरह आत्मा देह से संपूर्णता डिटैच हो जाती है, इसको शरीर स्थिति सब दे दिया। जब हम इस संसार में रहते हुए व्यक्त भाव से परे रहते हैं, व्यक्त बोल, व्यक्त दुनिया, व्यक्त देह, व्यक्त संसार संबंध, इनके प्रभाव से अलग रहते हैं, इसको नाम दे दिया अव्यक्त स्थिति। और ऐसे ही जब हम योग अभ्यास में परम धाम में स्वयं को अनुभव करते हैं, उसको कह दिया निराकार स्थिति। तो ये लगभग समान स्थिति हैं। इसी के साथ फरिश्ता स्थिति, जब आत्मा इस शरीर में रहते हुए स्वयं को सूक्ष्म शरीर में स्थित अनुभव करे, जब आत्मा स्वयं को अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग रखने की अनुभवी बन जाए, जब उसे ऐसा लगे कि उसके पैर इस धरती पर नहीं हैं, अर्थात उसकी बुद्धि धरती के आकर्षण से परे है, जब इस संसार का कोई भी आकर्षण उसको अपनी ओर नहीं खींच रहा है, इसको फरिश्ता स्वरूप कह दिया गया। तो ये सभी देह से न्यारी स्थिति हैं जो हमें आत्मविमानी बनाती हैं। केवल शब्दों का ही भेद है, इसलिए इसके बारे में कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो वो भी हमारी आत्मविमानी स्थिति होती है। बीज रूप और बिंदु रूप ये एक ही स्थिति के दो नाम हैं। कई लोग समझते हैं कि शायद ये भी अलग अलग हैं। और बिंदु रूप की परिभाषा बाबा ने इस तरह दी है कि जब आत्मा एक संकल्प में स्थित हो जाए उसको बिंदु रूप स्थिति कहते हैं। जब हम स्वयं को परम धाम में बाबा के साथ स्थित कर दें उसको बिंदु रूप स्थिति कहते हैं। ये स्थिति बहुत पावरफुल है क्योंकि इससे तेजी से विकर्म विनाश हो जाते हैं, और इस स्थिति के बाद जो संकल्प किया जाता है वो अग्नि के समान काम करता है, इसलिए इसको ज्वाला रूप स्थिति भी कहते हैं, जिसमें विकार और विकर्म दोनों भस्म होते रहते हैं। विकर्म भी और विकार भी दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को ज्वाला रूप स्थिति कहा जाता है। तो हम सभी इन सभी स्थितियों के अनुभवी बनेंगे। तो हम अब सरल रूप से देखें तो हमारी शक्तियां संकल्पों में यूज होती हैं। जब से हमने इस संसार में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी सतयुग के आदि से, तब से ही हमने संकल्प रचने प्रारंभ किए। कम संकल्प थे सतयुग में बहुत, इसलिए आत्मा की थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्रयोग हुई, नष्ट कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पूरे एक युग में केवल दो कलाएं कम हुई, अर्थात थोड़ी सी शक्ति नष्ट हुई। द्वापर युग के बाद विकारों के कारण व्यर्थ बढ़ा, संकल्प बढ़े, उनकी स्पीड बढ़ी, और इस कारण आत्मा की शक्ति तेजी से यूज होने लगी, नष्ट होने लगी। और कलयुग के अंत तक आते आते मनुष्य के मन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है, उसमें सदा टेंशन रहने लगा, सदा चिड़चिड़ापन रहने लगा, व्यर्थ ज्यादा हो गया, इसलिए आत्मा की संपूर्ण शक्ति लगभग नष्ट होने को आ गई। मनोवैज्ञानिक अब से बहुत समय पहले कहते थे कि मनुष्य की 80% एनर्जी वेस्ट होती है रोज, केवल 20% एनर्जी को ही वो कार्य में यूज करता है। अब ऐसा कहेंगे 90% एनर्जी नष्ट हो रही है, केवल 10% एनर्जी को मनुष्य यूज कर रहा है। अगर मनुष्य अपनी इस वेस्टेज को बचा ले, अगर वो 100% एनर्जी को यूज करने लगे तो उसका जीवन एक खेल बन जाएगा, उसकी समस्याएं दूर से ही जलकर भस्म हो जाएंगी, उसके पास टेंशन कभी आएगी नहीं, उसकी परिस्थितियां स्वतः ही लोप होती हुई नजर आएंगी, उसके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, काम काज बिल्कुल सहज, जीवन सहज, संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मनुष्य जब अपनी सारी शक्तियों को नष्ट करता है और उसके कारण जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, उसके कमजोर संकल्पों से परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, व्यवहार बिगड़ने से संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो बाबा ने हम सबको सबसे पहले ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, और आत्मिक स्वरूप में स्थित करा के हमें अनुभव कराया कि इस अभ्यास के द्वारा तुम्हारे संकल्पों की स्पीड कम हो जाएगी। हम देखते हैं कि जब हम देह से न्यारेपन के अनुभव में होते हैं तो हमारे संकल्प पूरी तरह शांत हो जाते हैं। ये एक विधि है जिससे हम अपने संकल्पों की स्पीड को रोक देते हैं, अर्थात मन की एकाग्रता इससे बढ़ जाती है और हम अपने को अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य है संकल्पों की स्पीड को धीमा करना। इस लक्ष्य में हम सफल हो जाएं तो योग के लक्ष्य में हम पूरे सफल हो जाएंगे। हमारे पास परिस्थिति हो, टेंशन हो, ज्यादा काम हो, भागदौड़ हो, इसके बाद भी हम अपने मन की स्पीड को तेज न होने दें, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है योग अभ्यास के लिए। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि जिस चीज को भी हम याद करते हैं, जिस वस्तु को हम देखते हैं, उससे हमारा संबंध हो जाता है और हमारे वाइब्रेशंस उसकी ओर, उसके वाइब्रेशंस हमारी ओर आने जाने लगते हैं। इतना ही नहीं, मान लो हम यहां बैठे हुए आकाश में किसी तारे को देखने लगे जो अब दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ी देर के लिए विचार कर लें कि मंगल ग्रह हमसे ऊपर पश्चिम की दिशा में इस समय है और हम अपनी बुद्धि के नेत्र से उसको देखें, यहां बैठे छत के नीचे बैठे, तो हमारा उससे कनेक्शन हो गया, हमारे वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे, उसके हमें आने लगेंगे। एक हजारों मील बैठा हुआ व्यक्ति जब हम उसे याद करेंगे तो तुरंत हमारे वाइब्रेशंस उसको, उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगेंगे। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट। ये एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट है जो उन दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच हो जाता है जिनका आपस में इस तरह संबंध होता है, देखने के द्वारा या संकल्पों के द्वारा। इसी आधार पे हम इस योग की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को देह से न्यारा होना है। इसकी हम आपके सामने चार विधि रख रहे हैं जिसका अभ्यास आप अपने जीवन में कर सकते हैं। रोज एक एक विधि का भी अभ्यास कर सकते हैं, रोज चारों विधियों को भी अपने अनुभव में ला सकते हैं। पहली विधि है कि संकल्प है कि मैं आत्मा इस देह में आई हूं, ये महसूसता। योग के विषय में हमें एक बात और जाननी आवश्यक है कि हम मन से संकल्प करते हैं, स्मृति करते हैं, और बुद्धि से हम उसका चित्र देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं उस चीज को। तो हम अपनी बुद्धि में अपना एक चित्र बनाएं कि मैं आत्मा ऐसी हूं, पॉइंट ऑफ एनर्जी जिससे चारों ओर शक्तियां फैलती हैं, लाइट फैलती है, ऐसा एक बहुत आकर्षक स्वरूप है हमारा। और फिर जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस तन में आई हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, तो हम एक चित्र बनाएं कि मैं आत्मा ऊपर से उतर रही हूं और इस तन में प्रवेश कर लेती हूं, मैं बैठ गई हूं इसमें आकर, अपने को कुछ क्षणों के लिए भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। तो इससे देह से न्यारी स्थिति हो जाएगी, संकल्प शांत हो जाएंगे, इस एक संकल्प में आत्मा स्थित हो जाएगी। हम इसको थोड़ा मेडिकली देख लें तो जब हम इस तरह देह से न्यारे हो जाते हैं तो देह से न्यारे होने का अर्थ है कि हमने अपने ब्रेन को पूरी तरह इनएक्टिव कर दिया, निष्क्रिय। अब वो फंक्शन नहीं कर रहा है, धीमी गति से उसकी मशीनरी चल रही है पर उसमें कोई विशेष फंक्शन नहीं हो रहा है। और इसका प्रूफ है कि जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं तो अगर हम बोलना चाहें तो धीमी आवाज में ही बोल सकते हैं, अगर हम हाथ उठाते हैं तो धीमी गति से ही उठता है, अगर हम चलना चाहें तो हम दौड़ने नहीं लगेंगे, तुरंत हम बहुत धीमी गति से चलेंगे। हम कुछ देखना चाहें तो हमारी देखने की इच्छा नहीं होती, हम बल्कि चाहते हैं आंख बंद करके हम बैठे रहें, कुछ न देखें। ये लक्षण है कि हमारे ब्रेन के सभी केंद्र अब काम नहीं कर रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। और जब हम अपने ब्रेन को इस तरह निष्क्रिय कर देते हैं तो ब्रेन में जो जन्म जन्म के प्रिंट्स हैं, छाप पड़ी हुई हैं, अनेक पापों की, अनेक बुरे संस्कारों की, पिछली घटनाओं की, वो धीरे धीरे डल होके मिटने लगती हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि निराकारी स्थिति के द्वारा तुम सब पास्ट भूल सकते हो। पास्ट को भूलना बड़ा कठिन काम होता है, यही पास्ट नहीं पिछले जन्मों का भी लंबा चौड़ा पास्ट है, उस सब को हम भूल सकते हैं इस तरह देह से न्यारे होते होते। बार बार देह से न्यारे होंगे, बार बार अपने ब्रेन को शिथिल करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, और इस तरह बार बार हमारे ब्रेन में जो छाप पड़ी हुई हैं, जो वेव्स छपी हुई हैं, तरंगे, वो डल होते होते बिटती जाएंगी और हमारे संस्कार सरल, हमारे विचार सरल और महान होते रहेंगे। तो फिर से हम आ जाएं उसी अभ्यास पे, हम अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा ऊपर से आकर भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूं, कुछ समय स्वयं को बैठा हुआ देखते हुए, फिर अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा ये शरीर छोड़ वापिस घर जा रही हूं। तो आने और जाने का संकल्प और एक विजन तैयार करेंगे, देखेंगे कि आत्मा शरीर में आई, उसने यहां पर कार्य किया और वापिस चली गई। इस अभ्यास को जितनी बार आप अपनी दिनचर्या में लाएंगे, बार बार करेंगे, तो सारा दिन चारों ओर जैसे सन्नाटा रहेगा। बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा जब कोई भी तुम्हारे सामने आएगा और सामने आते ही शांत हो जाएगा, तुम्हारे साइलेंस के वाइब्रेशंस उसके भटकते हुए मन को एकाग्र कर देंगे, ये वो स्थिति है। इसलिए हम सभी को ध्यान पूर्वक, केयरफुल्ली और स्ट्रिक्टली इस अभ्यास को बार बार करना चाहिए और अपने अनुभवों को बढ़ाना चाहिए। दूसरा अभ्यास, दूसरी विधि, देह से न्यारेपन की फीलिंग के लिए हम जरा अपने 84 जन्मों में लौटने लगे, यहीं से शुरू करेंगे हम अंतिम जन्म से। मैं आत्मा अभी इस तन में बैठी हूं, इस तन से पहले मैं आत्मा एक और शरीर में थी। आत्मा कभी मेल बॉडी में आती है, कभी फीमेल बॉडी में आती है, कभी नर का शरीर लेती है, कभी नारी का तन धारण करती है। तो हम एक चित्र तैयार करें कि मैं आत्मा इस शरीर में आने से पहले एक फीमेल बॉडी में थी, उसमें अपने को बैठा देखे 5-10 सेकंड, उससे पहले एक मेल बॉडी में थी, कभी एक गरीब परिवार में थी, कभी एक साहूकार परिवार में थी, कभी राजाई परिवार में थी, कभी बहुत साधारण थी, कभी बहुत महान थी। इस यात्रा को करें हम और करते करते पहुंचे बिल्कुल आदि में कि मैं देव शरीर में थी, सिर पर ताज था, अनेक बार ताज मिला। और इस तरह हम देह से स्वयं को न्यारा अनुभव करेंगे। ये स्वदर्शन चक्र घुमाने की बहुत अच्छी विधि है, इसको अगर रोज केवल एक बार कर लिया जाए शांत में बैठकर, तो बहुत अच्छे अनुभव तो होंगे ही, परंतु ये अभ्यास करने से धीरे धीरे हमें अपने पास जन्मों की स्मृति भी आने लगेगी और हम अपने आदि संस्कारों को कैच भी कर सकेंगे, हम पकड़ सकेंगे हमें आभास हो जाएगा, हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा हम क्या क्या पार्ट बजाकर अभी अंत में आए हैं। और जब हमें अपने हीरो पार्ट का ज्ञान हो जाएगा वे दिन हमारे लिए बहुत आनंदकारी होंगे। हम अतींद्रिय सुख में निरंतर झूमेंगे जब हमें इसका आभास हो जाएगा। तीसरी विधि, ये एक चिंतन की विधि है और बहुत सुंदर अभ्यास है। हम सभी स्टूडेंट बन जाएं और आत्मा के सातों गुणों को एक तरफ लिख लें। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। आठवां भी जोड़ लें, लाइट स्वरूप। लाइट का अर्थ यहां बिल्कुल हल्का। और हम चिंतन करें कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अपने को याद दिलाएं, अपने से बात करें कि हे आत्मा तू तो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप थी, सुख स्वरूप है। फिर अपने से प्रश्न पूछें कि क्या तू सुख स्वरूप है, क्या तेरे सभी दुख समाप्त हो गए, सुख स्वरूप आत्मा को दुख कहां से आए, तेरे लिए तो बाबा सुखों का भंडार लाया है, तू किसी भी दुख में दुखी नहीं हो सकती, तुझे तो अपने सुख के द्वारा सारे संसार के दुखों को हरना है, तू तो मास्टर सुखदाता मास्टर दुख हरता है। तो इस तरह लिख लें और दूसरी तरफ लिखें कि मुझे कोई परिस्थिति, किसी के शब्द, कोई जीवन की असफलता दुखी तो नहीं करती, कौन कौन सी चीजें मुझे दुखी करती हैं और फिर क्यों। तो एक सुख स्वरूप आत्मा की विशेषता का विश्लेषण करें, फिर अपने को याद दिलाएं मैं सुख स्वरूप हूं, मेरे सुख को इस संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। ऐसे ही मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप, ये तो मेरा स्वरूप है। शांत हूं तो मुझे संसार की कोई बात अशांत नहीं कर सकती, मेरा तो जन्म हुआ है संसार में शांति स्थापित करने के लिए। संसार की परिस्थिति और वायुमंडल, संसार में लोगों का व्यवहार और उनके बोल मेरी शांति को भंग नहीं कर सकते। शांति के सागर की मैं संतान हूं, उसने मुझे परम शांति का वरदान दिया है, इसलिए मुझे तो अपनी दृष्टि से, अपने वचनों से सबको शांति का दान देना है। इसी तरह मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, पूछ लें अपने से मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है या मुझे प्रेम की प्यास है, कोई मुझे प्यार करे। ये प्यार की प्यास आत्मा को बहुत निराश करती है, उदास करती है, लेकिन मैं तो प्रेम स्वरूप हूं। जब मैं प्रेम स्वरूप हूं तो अपने से पूछ लें कि मेरे चित्त में किसी के लिए घृणा भाव तो नहीं है, प्रेम स्वरूप आत्मा के मन में किसी के लिए घृणा भाव नहीं हो सकता, मैं तो प्यार के सागर की संतान हूं, मुझे तो इस सारे संसार में प्यार बांटना है, प्यार की प्यासी आत्माओं को तृप्त करना है। इस तरह एक एक गुण लेकर उस पर चिंतन करें, चिंतन लिखें। तो आत्मविमानी स्थिति का अर्थ है कि आत्मा इन सभी गुणों का स्वरूप बन जाए। सतयुग में हम आत्मविमानी हैं, वहां आत्मा के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम आत्मविमानी हैं इसका अर्थ है कि आत्मा के सभी गुण हमारे जीवन में होंगे, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल रूप से सारे गुण अधिकार रूप से हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। एक ये विधि है स्वयं को सोल कॉन्शियस बनाने के लिए। अब एक चौथी बात जो समय के अनुसार बहुत बहुत अच्छी है और बहुत बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को इस देह में अवतरित फरिश्ता समझें। इसको हम थोड़े से शब्दों में स्पष्ट कर लें कि हमारे मन से उठने वाले निरंतर के संकल्प एनर्जी बनकर इस शरीर में फैलते रहते हैं। और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण निरंतर कर रही है इस शरीर में, और उस शरीर के रंग बदलते रहते हैं हमेशा ही, जैसे संकल्प वैसा रंग। शांति के संकल्प हैं तो कुछ और रंग, पवित्रता के संकल्प हैं तो कुछ और रंग, आत्मा भयभीत हो गई हो कहीं तो कुछ और रंग, क्रोध आ गया हो तो कुछ और रंग, आत्मा आनंदित स्थिति में हो बिल्कुल खुशियों में हो तो कुछ और रंग। तो हमारे इस सूक्ष्म शरीर से ये कलर, ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं निरंतर, किसी की थोड़ी दूर तक, किसी की बहुत दूर तक। आजकल लोग फोटो से फोटोग्राफ ले लेते हैं और उन्हें दिखता है किसी का और आई से कहते हैं चारों ओर प्रभा मंडल 9 इंच तक बाहर है, किसी का 5 इंच है, किसी का 1 फुट है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो आत्मा जितनी प्योर और शक्तिशाली है उसका ये ओरा उतना ही दूर तक जाता है। हम सब में से कईयों का ये प्रभा मंडल सारे संसार में फैलता है, हमारी किरणें, हमारा प्रकाश सारे संसार में व्याप्त होता रहता है। हम जरा अपना चित्र बनाएं कि मैं फरिश्ता इस शरीर में यहां खड़ा हूं और मेरी किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, सारा भूमंडल मेरे प्रकाश की किरणों से भरता जा रहा है। हम इस विश्व की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न किया करता हूं कि जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का गायन और पूजन है, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में फरिश्तों का है, क्यों क्यों है? और बोलो, और वो ज्ञान नहीं लेते डायरेक्ट, सेवा करेंगे। तो यही कि एक तो वो देवी देवता धर्म से जुड़ी हुई आत्माएं नहीं है, इसलिए उनकी मान्यता उनके वहां होना संभव नहीं है। दूसरा, हमारे मुख के द्वारा तो वो ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन अंतिम समय में हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा उन्हें ज्ञान देंगे। तो हम ऐसा अभ्यास अभी से करें कि हम इस देह में फरिश्ते हैं और हम इससे निकलकर कहीं भी जा सकते हैं। वैसे हमें ये एक बात मालूम होनी चाहिए कि जहां हमारे संकल्प होते हैं वहीं हम होते हैं, जहां हमारे संकल्प होते हैं वहीं हमारा फरिश्ता स्वरूप होता है। कोई कोई लोग हम में से इन सब को कल्पना समझ लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि अगर हमें इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो पता चल जाता है कि ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है जो कुछ भी रच सकती है। इसलिए हम अभ्यास करेंगे कि इस देह से न्यारा मैं फरिश्ता इस देह में हूं। अपना एक चित्र बना ले फरिश्ते का, आत्मा हीरा प्रकाश के शरीर में बिल्कुल अलग चमक रही है। प्रकाश का शरीर तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, और आत्मा रंग बिरंगी किरणें बिखेरती हुई ब्रह्मकोटि के बीच चमक रही है, और हम इससे निकलकर ऊपर जा सकते हैं बाबा के पास और वापस इस तन में आके प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह बार बार हमें देह से न्यारे होने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारे मूल संस्कार प्रकट होने लगेंगे। हम देह से न्यारे होने के कारण सबके प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। बाबा के शब्दों में, जो देह से न्यारे बनने में नंबर आगे हैं वो विश्व का प्यारा बनने में भी आगे नंबर लेंगे। हमें किसी के प्यार की मांग नहीं होगी, स्वतः ही हम सबको प्रिय लगेंगे, अलौकिक आकर्षण हो जाएगा हमारे अंदर। और जब आत्मा देह से न्यारी हो जाती है तो कर्मेंद्रियों का रस समाप्त हो जाता है, और देह से न्यारे होने से देह के संबंधों के लगाव, उनसे मोह, पदार्थों में आसक्ति, इस संसार से कुछ पाने की इच्छा, ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। हमें और कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए आप सभी को चाहिए कि अपनी दिनचर्या में ऐसा प्लान बनाएं कि देह से न्यारे होने के भिन्न भिन्न अभ्यास भिन्न भिन्न समय पर अपने अनुभव में ला सकें। अब मैं आपके सामने दो छोटी ड्रिल और रख देता हूं जिससे योग अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुतों की यह शिकायत रहती है कि उनकी एकाग्रता नहीं होती। सारा दिन काम करने के कारण या और भी एकाग्रता भंग होने के बहुत सारे कारण हैं। किसी ने बचपन से ही अपने मन को बहुत भटकाया है, किसी ने जन्म जन्म भटकाया है, किसी ने विकारों के पीछे बहुत इसको भटकाया है, पाप कर्मों में बहुत भटका दिया है, इसलिए मन स्थिर नहीं हो सकता। मन की स्थिरता के लिए हमें दो बातें ख्याल रखनी हैं। एक तो मन तब स्थिर हो जाता है जब वो आनंदित हो। मन की स्थिरता के पीछे रहस्य है आनंद। आनंद की खोज के लिए ही वो इधर भटका, इधर उधर भटका, चाहे वो विकारों में गया, पापों में गया, उसने बहुत सारे पाप कर्म किए, वो आनंद खोज रहा था, लेकिन उसे आनंद इन सब चीजों में नहीं मिला। अब हम एक तो शिव बाबा के प्यार में आनंदित होकर अपने मन को एकाग्र करने का अनुभव करें, रोरिहान शुरू करें बाबा से, उसका सच्चे दिल से गुणगान करें, उसने हमारे ऊपर जो उपकार और प्यार बरसाया है उसको याद करें और अपने मन को उसके प्यार से भरकर मन को आनंदित करें और देख लें कि आनंदित मन किस तरह सहज ही एकाग्र हो जाता है। दूसरी चीज हमें ये जाननी चाहिए कि मन को एकाग्र करने के लिए हमारे ब्रेन को अधिकतम एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे संकल्प चलाने में हमारे मस्तिष्क को शक्तियां लगानी पड़ती हैं, वैसे ही संकल्पों को शांत करने में भी ब्रेन को सबसे अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जिसका ब्रेन कमजोर हो उसको एकाग्रता बहुत भारी पड़ती है। इसलिए अगर किसी का ऐसा है कि उसको एकाग्रता करने पर सिर दर्द होता है या और किसी तरह की कोई बुरी फीलिंग सिर में मस्तिष्क में आती है, तो उसको कुछ समय के लिए एकाग्रता छोड़ देनी चाहिए, यही उसके लिए कल्याणकारी होगा। और थोड़े समय तक दूसरे अभ्यास से जब एकाग्रता सहज हो जाए तब एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम में से अनेक पुरुषार्थी जबरदस्ती एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अपने सभी संकल्पों को हठपूर्वक रोककर एकाग्र होना चाहते हैं। उससे ब्रेन पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है जो जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए सरल रूप से हमें जानना चाहिए कि हमें अपने संकल्पों के साथ खींचातान न करके पहले संकल्पों की दिशा को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। अगर उल्टे संकल्प चल रहे तो उनको सीधे करें, जिस जिस दिशा में जा रहे हैं वो उस दिशा से उसको पहले एक अच्छी दिशा में ले आएं, तो अच्छी दिशा में आते ही संकल्प की स्पीड धीमी हो जाएगी। जो तेज दौड़ रहे थे वो धीमी गति से दौड़ने लगेंगे और उनको एकाग्र करना सहज हो जाएगा। एकाग्रता के लिए यह भी आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरी, कि हम प्रॉपर डाइट, भोजन ठीक ठाक और नींद प्रॉपर ठीक ठाक नींद अवश्य इस शरीर को दें। कई लोग सोचते हैं कि इससे तो कोई संबंध हमारे योग का नहीं है, बाबा ने तो कहा निद्राजीत बन जाओ, तो शायद निद्राजीत का अर्थ यह है कि सोए नहीं। यह गलत समझ है। निद्राजीत का अर्थ है, पहला अर्थ, कि हम अमृत वेले न सोएं। दूसरा अर्थ, नींद पर हमारा कंट्रोल हो, हम सदा नींद के वश न रहें, आलस तंद्रा के वश न रहें। बाकी हमारे शरीर को 6 घंटे नींद की तो आवश्यकता होती है एवरेज। जो व्यक्ति इसको ज्यादा कंट्रोल करता है उनको तत्काल इसका प्रभाव दिखाई देता है। अनेक कुमारों के साथ ये हो चुका है, उन्होंने ये बात सुन के कि निद्राजीत बनना है, अबोधता में बहुत ज्यादा उमंग उत्साह के वश अपनी नींद को कंट्रोल करके 3 घंटे 2 घंटे पर लाया और परिणाम थोड़े दिन में देखने में आया, बीमार हो गए या मेमोरी नष्ट होने लगी। और उसके बाद योग बिल्कुल नहीं लगा, एकाग्रता की शक्ति खत्म हो गई। इसलिए योगी को चाहिए कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, इसको ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि हम बिल्कुल न खाएं तो हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, दो चार दिन तो लग सकता है अच्छा, लेकिन सदा योग में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए योगी के लिए कहा है, जो व्यक्ति बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो व्यक्ति बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, योगी नहीं बन सकता। वो व्यक्ति जिसकी नींद और भोजन संयमित है, सहज योगी बन जाता है। तो नींद और भोजन तो प्रकृति से हमें एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है, शरीर को और ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, इसमें हमें ज्यादा खींचातान करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात और जोड़ दूं, हम में से कई लोग 2 बजे उठना चाहते हैं, बाबा ने ही मुरली में कहा और बहुत अच्छी बात है, 2 बजे उठकर योग बहुत अच्छा लगता ही है, सबको अनुभव है, परंतु सबका यह भी अनुभव है कि 2 बजे उठने के बाद योग तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुतों को 4 बजे के बाद योग नहीं लगता। 2 से 4 अच्छा लगेगा, फिर 4 के बाद बुद्धि नील हो जाएगी, और अगर 2-4 दिन लग भी गया तो 6 के बाद नींद आने लगेगी और मुरली में झुटके आएंगे, मुरली का रस समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करें ताकि हमारे अभ्यास सदा काल चलते रहें। हाँ, हम 2 बजे उठ सकते हैं तब अगर हम 9 बजे सोते हों, लेकिन हम सोते 11 बजे हों और फिर हम 2 बजे उठें तो ये सदा काल के लिए लाभकारी नहीं होता है। इन सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें अपने अभ्यास में रखना चाहिए। अभी मैं वो 2 ड्रिल आपके सामने रख देता हूं जिनके द्वारा एकाग्रता बढ़ जाती है, योग करने को मन करता है, योग के संबंध की सारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। पहले हम एक 10 मिनट का समय लेकर बैठें एकांत में और 5 सेकंड के लिए स्वयं को भ्रकुटी के मध्य आत्मा देखें। देखना है हमें आत्मा, केवल समझना नहीं है। तीसरे नेत्र से, बुद्धि से हम स्वयं को एक चमकता हुआ हीरा आत्मा देखें भ्रकुटियों के बीच, 5 सेकंड के लिए। फिर अगले 5 सेकंड के लिए हम परम धाम में शिव बाबा को चमकता हुआ देखें, हमें स्पष्ट दिखाई दे। फिर 5 सेकंड आत्मा को देखें, फिर 5 सेकंड बाबा को देखें, और ये क्रम हम जारी रखें। अगर हमें अच्छी स्थिरता होने लगे तो हम इस समय को 10 सेकंड फिर 15 सेकंड बढ़ा लें, और अच्छी स्थिरता होने लगे तो 30 सेकंड तक ले चलें, फिर 1 मिनट तक ले चलें, और ये अभ्यास 10 मिनट तक करें। जिसको योग बिल्कुल न लगता हो, बहुत कठिनाई हो, वो 15 दिन के लिए एक ऐसा प्लान बनाए कि रोज 3 बार 10-10 मिनट का समय लेकर बैठें और ये ड्रिल आत्मा को और परमात्मा को देखने की बार बार करें, तो स्थिरता बढ़ जाएगी और योग अभ्यास अच्छा हो जाएगा। एक और चीज मैं इसमें जोड़ दूं, जिनको अपनी बुद्धि को स्थिर करना हो उनको आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और सरलता का गुण हमारे जीवन को सहज बनाकर बुद्धि को स्थिर कर देता है। ये एक ड्रिल है। आज तक अनेक ब्राह्मणों ने इसके अभ्यास के द्वारा अपने योग को सरल किया है। आपको ये अनुभव इसलिए हम बता देते हैं, बहुत लोग जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता था, 15 दिन जब बहुत केयरफुल्ली इसका अभ्यास किया तो योग सदा के लिए सहज हो गया। दूसरी विधि जिसको रूहानी ड्रिल कहते हैं, उसका अभ्यास हम इस तरह करेंगे कि पहले हम स्वयं को इस देह में बैठा हुआ फरिश्ता देखें, अच्छी तरह अपने फरिश्ते स्वरूप को विजुअलाइज करें, फील करें, देखें कि मैं इस देह में प्रकाश के शरीर में विराजमान हूं। यह भी कर सकते हैं कि बाबा से, सर्वशक्तिवान से बहुत तेजस्वी किरणें मेरे ऊपर पड़ी और उन तेजस्वी किरणों से धीरे धीरे शरीर लोप हो गया, तत्वों का बना हुआ शरीर तत्वों में मिल गया और पीछे रह गया मैं फरिश्ता, आत्मा लाइट के शरीर में बैठी है और कुछ नहीं बचा केवल आत्मा प्रकाश के शरीर में। दूसरा संकल्प करें कि अब मैं फरिश्ता यहां से उड़कर ऊपर की ओर जा रहा हूं, धीरे धीरे 5 सेकंड में हम ऊपर चलें सूक्ष्म लोक में और बाबा के सामने हूं। बाबा के सामने जाकर हम बाबा से दृष्टि लें, गुड मॉर्निंग करें, बात करें या उसके साथ सूक्ष्म लोक की सैर पर चलें, देखें कि बाबा वहां से हमें सारे संसार को दिखा रहा है या वहां से हम और बाबा दोनों अपनी दृष्टि से संसार को लाइट माइट दे रहे हैं। कुछ सेकंड ऐसा चक्कर लगाने के बाद हम अनुभव करें कि मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से निकलकर अब आत्मा बनकर परम धाम की ओर उड़कर जा रही हूं और 5 सेकंड में बाबा के पास। हम 5-5 सेकंड का गैप इसलिए दे रहे हैं कि धीमी गति से करने से हमारी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति, स्थिरता की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बाबा के पास हम पहुंच गए और बाबा अपनी किरणें डालकर हमें चार्ज कर रहा है, हमारे अंदर शक्तियां भर रहा है। 5-10 सेकंड बाबा ने हमको शक्तियों से भरपूर कर दिया और हम अब नीचे उतरने लगे। आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही है और आकर सूक्ष्म लोक में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर मैं फरिश्ता वहां से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं और स्तन में प्रवेश कर लेता हूं। ये एक राउंड हो गया, इसका अभ्यास कम से कम 5 बार अवश्य कर लें। एक समय बैठकर 5 बार अगर सवेरे इसका अभ्यास करेंगे तो सवेरे के उठने वाले सभी संकल्प शांत हो जाएंगे और सवेरे का समय बड़ा आनंदकारी हो जाएगा। जिनको सवेरे योग अच्छा नहीं लगता वो इस रूहानी ड्रिल से योग अभ्यास शुरू करें और 5 बार ये रूहानी ड्रिल करने के बाद फिर स्वयं को स्थित कर दें परम धाम में कि बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा बैठी हूं या मैं फरिश्ता इस देह में हूं और परम धाम से बाबा की किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। इस तरह हम अपने योग अभ्यास को सरल कर सकते हैं, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि योग एक साधना है और ये साधना अभ्यास से सरल हो जाती है। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा एक दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते रहने से एक जड़मति व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। पहले कुएं होते थे गांव शहरों में, रस्सियों से पानी खींचा जाता था तो ऊपर जो होता था ना बाउंड्री, वो सिल की होती थी, चट्टान सिल, बहुत बड़ी शिला, वो रस्सी से घिस घिस के 1 इंच 2 इंच 3 इंच गहरी हो जाती थी। पत्थर को काट दिया रस्सी ने हजारों लाखों बार, आवत जावत, आ रही जा रही रस्सी घिस रही है। तो इस तरह हमें यह ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे पास कम बुद्धि है, हमारा योग नहीं लगता, हमारा कोई संस्कार कड़ा है, हमसे कोई कार्य नहीं होता, हमारी कुछ समझ में नहीं आता, अभ्यास करने से सब कुछ सहज हो जाता है। कालिदास के लिए आपने सुना है, मूर्ख दिखाया गया उसको बिल्कुल, लेकिन अभ्यास करने से संस्कृत का सबसे बड़ा कवि बन गया, राष्ट्र कवि बन गया था अपने समय का। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास के लिए हमें अपनी दिनचर्या से थोड़ा थोड़ा समय भी निकालना चाहिए। हमें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। यह शिकायत तो मनुष्य तभी करता है या तो उसके पास कोई ठोस लक्ष्य न हो या वो कुछ करना न चाहता हो। मनुष्य अगर कुछ करना चाहे तो उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। तो एक बात हम ध्यान देंगे अभ्यास पर, और अभ्यास में भी अपनी दिनचर्या में ही इन सब बातों को जोड़ लें। अलग से टाइम न भी निकले तो दिनचर्या में कर्म करते हुए भी इन सब प्रैक्टिसेस को हम ला सकते हैं अपने अनुभव में और सब कुछ सहज कर सकते हैं। ऐसे ही कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कि हम इन सब बातों का चार्ट बना लें थोड़ा थोड़ा, कभी कोई अभ्यास कभी कोई अभ्यास। ये जरूरी नहीं कि रोज सारे ही अभ्यास किए जाएं, पर यह जरूरी है कि रोज कुछ ना कुछ अभ्यास किया अवश्य जाए। इस तरह हम सभी अपने योग अभ्यास को बढ़ाएं, ये महत्व समझते हुए कि योगी ही संसार में सबसे महान आत्माएं हैं। जो योगी हैं वही संसार के सहारे हैं, जो योगी हैं उनके द्वारा ही संसार का अंधकार दूर होगा। योगी आत्मा ही पुण्य आत्मा है। बाबा के वो शब्द मैं आपको याद दिला दूं, आपने सुने होंगे, बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन योगी तो मानो मेरा ही स्वरूप है। तो हम ऐसे योगी बने जिनमें सारा संसार भगवान को देख सके। भगवान को तो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन योगी भगवान का स्वरूप है। भगवान क्या होगा इसको लोग समझ लेंगे योगियों को देखकर। तो हम सभी बाबा के महान आत्माएं योगी आत्माएं हैं। हम सभी को योग के महत्व को समझते हुए, ये जानते हुए कि अब योग ही जीवन का सार है, ये जानते हुए कि योग के द्वारा ही हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे, ये बुद्धि में रखते हुए कि योग के द्वारा ही हम कर्मातीत होकर घर चलेंगे, और सबसे बड़ी बात योगी ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, योगियों के द्वारा ही संसार में धर्म का विजय का झंडा लहराया जाएगा, जय जयकार होगी, बाबा का नाम हर दिल पे छप जाएगा। इसलिए योग को विशेष विशेष अटेंशन देकर हम सबको अभ्यास में लाना है। और बार बार अंत में मैं ये कहूंगा कि बार बार हमारे कानों में बाबा का ये मंत्र गूंजता रहे कि बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मेरे पास आ जाओ, बच्चे मैं तुम्हारी कब से इंतजार कर रहा हूं, चले आओ, उड़ाओ इस संसार से, आओ मेरे पास आकर विश्राम करो। ओम शांति।